तो कई कई प्रकार के प्रश्न पूछते जो नए नए आते ना मिलने जुलने के लिए, इसलिए हम एक दिन में बाबा की पूरी हिस्ट्री आपको सुना देते हैं। एक विचित्र कहानी है, दिव्य और अलौकिक है। जीवन कहानियां दुनिया में बहुतों की पढ़ी, प्रैक्टिकल में देखी भी, कैसे बदलते रहते हैं। महात्मा गांधी कल क्या था, हमारे जीवन में था क्या था, और क्या से क्या बन गया, क्या से क्या काम करके दिखाया। प्रैक्टिकल में था तो एक साधारण मनुष्य ना, सामने गांव भी है, गांव में क्या काम किया, कैसे किया, पीछे कैसे अफ्रीका में गया, फिर कैसे आया, सबको सब पता है। तो चेंज आने में देरी नहीं लगती है। आज कुछ है, कल कुछ का कुछ बन सकता है। तो बाबा की जीवन में शुरू करती हूं कि आज से लगभग 1936 की बात है, हैदराबाद सिंध में दादा लेखराज के नाम से नामी ग्रामी व्यक्ति थे। धनी थे, दानी थे, कृष्ण के अनन्य भक्त थे, गीता के प्रेमी थे, गीता के पाठ के बगैर भोजन नहीं पान करते थे, गुरुओं में अटूट श्रद्धा थी, और यहां तक भावना थी कि गुरु ऐसा मुझे मिले जो मुझे भगवान का दीदार करावे, दर्शन करावे। इसलिए जिस किसी का नाम सुनते थे ना, ये बिल्कुल पहुंचा हुआ है, तो वो गुरु करके प्रैक्टिकल में उनके संग में रह के एक ही आश रखते थे कि मुझे एक बार भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर की आश अंदर में रह गई, मनुष्य यानी देहधारी के द्वारा उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो 1936 में बाबा का परिवार है कलकत्ते, हैदराबाद सिंध में था, परंतु बिजनेस कलकत्ते में था। बिजनेस भी बहुत ऊंचा था, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, राजाओं रानियों में उसको बहुत मान प्राप्त होता था, क्योंकि ज्वेलर जो होता है ना, उनका राजाओं से रानियों से घनिष्ठ कनेक्शन होता है, इसलिए राजाओं के दरबार में बाबा को बहुत बड़ा मान प्राप्त होता था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये ऐसा व्यक्ति है, सत्यवादी है, जिबान बदलती नहीं है, जो दाम है सो दाम है, परंतु और बातों में धर्म का नाम लेके झूठ बोलना, ये कहना, वो बाबा ने जानता था न वो करता था, तो लोगों को मालूम था बाबा के बारे में। तो 1936 में बाबा अपने बिजनेस से कार्यवश हैदराबाद से ने कलकत्ता से सीधा ही बम्बई में गया, और बम्बई में बाबा के मित्र का मकान था, और वहां हर रोज बाबा भोजन सात्विक ही खाता था। बाबा ने जीवन में शराब, कबाब, मीट, अंडा कभी भी स्वीकार नहीं किया था, और भक्त होने के कारण उनके सारे परिवार के अंदर भक्ति भाव था। तो जब बाबा कलकत्ते से बंबई में गया है, तो ऐसे मित्र के घर में ठहरते थे जहां सत्य संग भी मिले और जहां भोजन भी बाबा को शुद्ध मिल सके। तो बाबा का ही कोई रिश्तेदार था, तो जब जाता था हमेशा, तो नई बात तो थी नहीं। इस बार भी बाबा वहां पहुंचे हैं तो गीता का सत्संग चल रहा है। तो गीता का सत्संग चलते चलते सुनते सुनते ना, अचानक ही परम पिता परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी। ये आंखें बंद हो गई और अंदर का ज्ञान का नेत्र, अंदर का दिव्य नेत्र खुल गया। तो उनको अचानक ही दिव्य साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होते ही आप जान सकते हो, जो प्यासी आत्मा होंगी, जो मिलनी चाहती होंगी, उसका अंतरंग कैसा खिर गया होगा। तो बाबा का चेहरा बहुत खिरा हुआ था, जैसे बहुत कुछ उसको प्राप्तियां हो रही हैं। तो उस समय जब दर्शन हो रहा था, सभा पूरी हो गई, तो सब बाबा को देखने लगे कि आज बाबा को क्या हुआ है। बाबा आज सत्संग से नहीं उठता है, तो सब बाबा के सामने जैसे आप बैठे वैसे वो बैठ गए। बाबा को देखती रही तो बाबा के चेहरे से उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ दर्शन हुआ है आज, कुछ इसका लक खुला है जो भगवान ने इसके मन की आशा को पूरा किया। तो जब बाबा के नेत्र खुले तो करंट ऊपर वाले की ऐसी चालू थी आलमैटी बाबा की, जो उसकी करंट से बाबा ने जिस किसी को देखा ना, जो उसके सामने रिश्तेदारी बैठे थे सत्संग में, उन सब को भी ऐसा दिव्य साक्षात्कार हुआ कि वो भी गुम हो गई, कुछ आत्माएं सब नहीं, कुछ गुम हो गई और उनको भी दिव्य दर्शन होने लगा। एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, चौथे को हुआ, इधर हुआ उधर। तो ये लीला देख करके दूसरे लोग सोचने लगे कि आज तो ऐसा लगता है कि प्रभु की लीला चल रही है, प्रभु अपना दर्शन दे रहा है हम सबको, ये क्या हो रहा है। सब आश्चर्य से चमक उठे। कुछ समय के बाद वो बाबा के पास में बैठ करके बाबा का सारा दृश्य देख करके बाबा जब होश में आ गए तो बाबा ने देखा ये सब मेरे सामने बैठ गए हैं। तो बाबा ने पूछा क्या हुआ बच्ची, आज सत्संग पूरा हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा सत्संग तो पूरा हो गया, लेकिन ऐसा लगा कि आज आप अपने आप में नहीं हो और आपकी दृष्टि से जिसके को साक्षात्कार दृष्टि मिली वो साक्षात्कार में चला गया। बाबा आपने इसको दृष्टि दी, ये भी दिव्य दृष्टि में चली गई, वो भी दिव्य दृष्टि में चला गया। तो बाबा खुद आश्रम में पड़ गया, बोला मैंने तो नहीं देखा किसी को, मुझे मालूम नहीं है कौन सी शक्ति थी जिसने आपको देखा और जिसने आपको दिव्य दर्शन कराया, पर मेरी आंखें जरूर होंगी लेकिन मुझे मालूम नहीं है। मुझे मेरा साक्षात्कार मुझे आज हुआ है, वो मेरी आश पूरी हुई, भगवान ने पूरी की, बस मैं उसी में मगन हूं। फिर बाबा को परमात्मा से वरदान मिला, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और उससे एक वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम। तत्त्वम के ऊपर बाबा का ध्यान गया कि ये किसने कहा और कैसे कहा, तत्त्वम का क्या रहस्य है, मैं वो कैसे हूं। तो परमात्मा ने उनको साक्षात्कार करा के ऐसा अनुभव कराया जो बाबा क्या फील करता है कि मेरी लाइफ में अंदर ही अंदर कुछ चेंज आ रही है, खुशी शांति शक्ति के प्रेम के झरने बह रहे हैं, बस बाबा फूला नहीं समाता था। ऐसे लगातार बाबा को कई साक्षात्कार मुंबई में होते रहे। बाबा को लगा कुछ प्लान है परमात्मा का मेरे बारे में, मेरा कुछ भाग्य खुल रहा है, भगवान को मेरे से कोई सेवा लेनी है। तो परिवार को पत्र लिखा मुंबई से हैदराबाद सिंध में, तो सिंध में सबको पता लगा बाबा को ऐसे अचानक ही बाबा की लाइफ में नया मोड़ आ गए हैं और बाबा को दिव्य दर्शन होने लगे हैं। फिर जब बाबा हैदराबाद सिंध में आए तो घर वाले उस इंतजार में थे, जब बाबा को देखा तो बाबा बदला हुआ सबको नजर आया, सारी दिनचर्या चेंज, उठना बैठना देखना, बस बाबा को जैसे एक अलौकिक मस्ती चढ़ी हुई थी और एकांत में रहना। कहां तो उनके 5 बच्चे थे, उनके पोतरे पोतरियां थी, उनमें प्यार मिलना झुलना खिलाना बच्चों को टू मच प्यार था। जैसे परिवार में कोई कोई होता है ना, परिवार से बहुत प्यार होता है, और अब जैसे बाबा न्यारा न्यारा एकांत में बैठता है और भगवान से एकांत में बैठ के जैसे बातें कर रहा है, अंदर ही अंदर उसका मनन चिंतन चल रहा है, ये क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है, क्या क्या अनुभव हो रहा है। फिर थोड़े समय घर वालों ने फील किया और बाबा ने फील किया कोई शक्ति मुझे खींच रही है, तो थोड़े टाइम की फुर्सत निकाल करके बाबा बनारस की तरफ चले गए। और वहां पर बाबा को एक रात अचानक ही सोया हुआ था जैसे इसको कोई जगाता है, उठो जागो उठो जागो। बाबा की जब आंख खुली तो देखा लाइट ही लाइट है, परंतु कोई है नहीं मेरे सामने, तो ये किसने आवाज किया उठो जागो, कौन है। आश्चर्य में उठ खड़ा हुआ, फिर दरवाजा खोला तो बाहर जाता है तो देखता है लाइट का ही रास्ता बन जाता है और जाता जाता कोई स्थान बना हुआ है, जैसे बने हुए थे बगीचे में स्थान, वहां पर बैठ गया। रात्रि का समय, बाग बहुत बड़ा, मालूम है बाबा को जानवर निकलते हैं बड़े बड़े जहरीले, परंतु बाबा को ईश्वरी शक्ति खींच के ले गई और बाहर जाके बैठ गए थली पर। फिर परमात्मा ने उसको दूसरा वाली दिव्य दृष्टि दी। ये आंखें तो अपना काम करती हैं, वो अंदर की आंख ने अपना काम किया। तो जब बाबा को दिव्य दृष्टि मिली तो परमात्मा ने इसको कलयुगी सृष्टि का महाविनाश दिखाया कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश कैसे होने वाला है। तो पहले देखा भारत में कैसी सिविल वार के द्वारा मौत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे देख भान में आकर के लड़ झगड़त की नदियां बह रही है। तो बाबा घबरा गया एकदम, जैसे बाबा रो रहा है कि ये क्या हो रहा है, और प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु जी बचाओ बचाओ। फिर फटाफट दूसरी सिनाई कुदरती आपदाएं, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं तूफान, भूखापन सूखापन, इसमें मनुष्य चिल्ला चिल्ला के मरते जा रहे हैं। तो बाबा और भी घबराने लगा, रोने लगा। फिर रोने का आवाज कोठी में बाबा के रिश्तेदारों ने सुना, वो आए तो देखा तो बाबा का रोने का आवाज, आज दिन तक रोया नहीं, ये क्या हुआ? तो शायद कोई ऐसा जहरीला जानवर है, उसने कुछ चक मारा है या क्या है। तो देखा बाबा तो ध्यान अवस्था में है पर रो रहा है, घबराया हुआ है। तो सब आश्चर्य से खड़े हो गए। फिर तीसरी सीन अंदर देखी तो ऊपर से अग्नि बाण छूट रहे हैं, बांस की वर्षा हो रही है, सारी सिटी की तबाही हो गई। तो कुछ समय के बाद जब बाबा होश में आए तो बाबा ऐसे ऐसे करके चारों ओर देखने लगा कि मैं कहाँ हूं, वो क्या हुआ, वो जो रत की नदियां बही वो तो यहाँ एक रत की बूंद भी नहीं है, एक भी लाश नहीं है। तो ये सब किसने दिखाया और क्यों दिखाया? मैं सोया हुआ नहीं, मेरा स्वप्न नहीं, मेरी कोई कल्पना नहीं, ये किसने दिखाया? बस बाबा का ध्यान परमात्मा में चला गया। ये परमात्मा ने मुझे जैसे अर्जुन को विराट रूप में सब कुछ महाविनाश दिखाया, आज प्रभु ने मुझे इतना बड़ा महाविनाश दिखाया है जो बाबा उस पर घबराया हुआ था। फिर तो बाबा को जिगरी वैराग आ गया, इतना जिगरी वैराग आ गया तो जैसे ये सृष्टि बाबा ऐसा ही देखता है, ये कब्रस्तान है, ये कब्रस्तान हुई पड़ी है। क्यों? परमात्मा से जब बाबा ने बातें करना शुरू की तो परमात्मा के द्वारा उसको आवास मिला, उठो जागो, कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में होने वाला है, उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। अब बाबा गहरी सोच में, विश्व कहां और मैं कहां, मैं विश्व का कल्याण कैसे करूंगा, ये मुझे किसने कहा, कैसे कहा, क्या करना है? गहरी सोच में, इतनी मीठी चिंता में बाबा चला गया जो बाबा को न खाना अच्छा लगता है, न पीना, न बिजनेस अच्छा लगता है, सब सब फीका लगने लगा। अब बाबा उसी गहराई में है कि अब मुझे क्या करना है प्रैक्टिकल में। फिर बाबा को जैसे डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, आदेश मिलता है, अब तुमको ये करना, अब तुमको ये करना है, तो कि अलग ही बाबा को अंदर परमात्मा की शक्ति ने आवाज दिया कि तुमको अभी ये करना है। जैसे प्रेरणा कहने तो बस बाबा को आलमेटी ने प्रेरणा दी कि सबसे पहले तुमको अपना विनाशी जो धन है, धंधा है, उसको समाप्त करना है, तेरे काम में आने वाला नहीं है। अब तुमको ज्ञान रत्नों का दान करना है, जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुमको बांटना है, और तुमको महायज्ञ रचना है, ज्ञान जिसको हम ईश्वरी विश्वविद्यालय कहते हैं वो रचना है, और ज्ञान अमृत पीना और पिलाना, यही तुम्हारा धंधा रहेगा। तो बाबा को जैसे बाबा की आलमेटी बाबा की प्रेरणा मिली, संकल्प मिला, तो बाबा सीधा ही कलकत्ते में चला गया, अपने भागीदार को सेटिस्फाई किया कि भाई मैं आपको वैसे नहीं छोड़ना चाहता हूं, न मैं को मेरे को दुनियावी लाइफ को और आगे बढ़ाना है, ये मेरी लाइफ यहां फिनिश हुई, अभी अब मैं दूसरी लाइन में जा रहा हूं, अब मेरे से परमात्मा कुछ और कराने जा रहा। तो ऐसे करके बाबा ने भागीदार को सेटिस्फाई करके वकील को बिठा के अपने बिजनेस को समाप्त किया। तो बाबा कलकत्ते में थे, तो बाबा का एक चाचा था, वो संत मूलचंद के नाम से मशहूर था, बहुत गुप्त दानी था, ऐसे मुठियां भर के दान करता था, कभी गिनती नहीं करता था। मैंने 500 इसको दिया, 1000 इसको दिया, 10,000, फिर उसका अभिमान दिखाना कि मैंने आपको टाइम पर दिया था, ये किया। गुप्त दान, ये मुट्ठी करे तो इसको पता न लगे इसने कितना किया। और गरीबों की खूब सेवा करती थी, सड़क पर कोई बीमार को देख नहीं सकता था, उनके खाने का, फल का, फ्रूटा का सब प्रबंध वो करता था। हॉस्पिटल में जब देखो तो वो चाचा जी की सारी कारोबार चल रही है, पेशेंट के पीछे वो काम कर रहा है। तो बाबा को उसका भी एक बचपन से ही वो धन, बाबा धन कमाता था, चाचा के हाथ में देता था, वो दान में लगा लेता था। उसको अपना औलाद नहीं था, पर धन उसको भी आ रहा था अपने तरफ से और बाबा की तरफ से। खैर, तो वो चाचा जी की स्थिति थोड़ी डाउन थी शरीर की, बहुत बुजुर्ग था, मैंने अपनी आंखों से देखा। और ये जो हिस्ट्री मैं आपको सुना रही हूं, बहुत थोड़ा टाइम मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, बाकी बाकी सारा टाइम मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मेरा घर बाबा के घर के बिल्कुल पास में था। तो हम बचपन में बाबा के घर में जाते आते रहते थे। बाबा का बेटा और मेरा लौकिक भाई दोनों आपस में दोस्त थे। तो दोस्तों ने नाते में बाबा के घर में कोई जज कार्ज होता है तो दोस्त कहता है चलो चलो आज मेरे दोस्त के घर में ये है, उसने कहा अपने परिवार वालों को भी लेके आना। तो सत्संग हुआ किसी उच्च कोटि के महात्मा का, तो गई, बच्ची की शादी बाबा ने कराई वो मैंने देखी। बाबा के कार्य में घर में जो भी जज कार्ज होता था ना, उसमें तकरीबन मैं 8-10 बारी बाबा के घर में आई गई। तो मैं देखती थी बाबा के घर की विशेषता थी, धन था पर अभिमान बिल्कुल नहीं था, भावना इतनी अच्छी रहती थी, निर्माणता इतनी रहती थी, सबके प्रति बहुत रिगार्ड था सबके अंदर। गरीबों के प्रति दान भी करते थे तो अभिमान जरा भी नहीं था, ये उनके घर की विशेषता। और सोना चांदी पानी अन्न सब प्रकार का दान करते थे। उनके बच्चों में भी ये संस्कार पड़ गए, जो बाबा दान करता है वो सेम हमको भी करना है, नहीं तो बाबा तो महाराजा महारानी बन जाएंगे, हम क्या बनेंगे। तो बच्चे समझते मेरे पिताजी ने सोना दान किया तो मेरे को भी सोना दान करना है, मेरे पिताजी ने आज अनाज अन्न दान किया तो हमको अन्न भी दान करना है, ऐसे समझे सारे परिवार में एक बहुत अच्छी भावना थी। परंतु ये जो चेंज आई वो मैंने जल्दी ही देखी, इतनी जबरदस्त चेंज, आज दिन तक तो देखी नहीं, आयु भी छोटी थी, कोई बड़ी तो थी नहीं, परंतु मेरे संस्कार कुछ ऐसे थे आध्यात्मिक तरफ, इसलिए मेरी रुचि थी। तो जैसे मैं बाबा के घर में आई, पहले दिन सत्संग सुना, ओम की धुनी लगी। बस ओम की धुनी नहीं थी पर मेरे लिए ऐसा था जैसे कोई जादू की बंसरी बजी, बस मन खिंच गया और शांति में ऐसा मन लग गया कि बस दिल करता था हम उसी शांति में बैठे रहे। पहला तीर लगा और जीवन में चेंज आ गए और लक्ष्य मेरा जीवन का बदल गया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, शादीवादी ये नहीं, मैं ये समाज की अच्छी सेवा करूंगी, जैसे बाबा ने काम किया, जैसे हमारे मम्मा ने काम किया, ऐसे मैं भी करूंगी। तो बचपन से लक्ष्य पक्का हो गया। और बाबा को जब भी हमने देखा, क्योंकि बाबा कलकत्ते से फिर हैदराबाद सिंध में आए, घर वालों ने देखा बाबा की लाइफ में बिल्कुल चेंज है, रात दिन बाबा की दिनचर्या में बिल्कुल कंप्लीट चेंज, सारी सारी रात बाबा नींद नहीं करता है, भगवान से बातें करता है, फिर जो बातें सुनता है वो लिखता रहता है, कागज के कागज लिख करके खड़ा कर देता है। फिर बाबा के रिश्तेदार मित्र बच्चियां बहुआ जो आती थी बाबा के कमरे में तो देखती तो बाबा ने बहुत कुछ लिख करके रखा है, पहले तो कभी लिखा नहीं था, अभी लिखना शुरू हुआ तो क्या लिखता है बाबा, सबने पढ़ना शुरू किया, सबने अपनी कॉपी उतारने शुरू कर दी, एक एक महावाक्य में इतनी शक्ति, जो लिखे पढ़े उसका चित्त शांत हो जाए, बस जीवन का लक्ष्य उनके सामने क्लियर हो कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। अब बाबा को भी वंडर लगे कि मुझे ये ज्ञान कौन दे रहा है, कौन सी शक्ति मेरे पीछे है। तो विनाश के बाद, विनाश का साक्षात्कार करने के बाद, धंधा समाप्त करके जब हैदराबाद के तरफ आ रहे थे तो चाचा जी की अंतिम अवस्था थी शरीर की, तो बाबा को टेलीग्राम गई तो भाई आप जल्दी आ जाओ। तो जैसे बाबा आने वाले थे चाचा जी की मृत्यु पर, तो बाबा को उस समय में इतनी मस्ती चढ़ी हुई थी, जो टेलीग्राम एक कराई है घर में कि अल्लाह को अल्लाह मिल गया। अल्लाह मीन्स आत्मा, आत्मा को अल्लाह मिल गया। बे मीन्स भागीदार, भागीदार को झूठी बादशाही मिल गई, क्योंकि फैसला करके भागीदार को अपना हिस्सा दे दिया, बाबा ने अपना हिस्सा ले लिया। आई तार अल्लाह को, अल्लाह मीन्स आत्मा को तार आई है। हुआ रेल में राही, छोड़ के झूठी बादशाही, लौट रहा हूं वतन को। तो घर वालों ने पढ़ा, अल्लाह कौन, बे कौन, बादशाही कौन सी, कैसी बाबा सब कुछ छोड़ करके आ रहा है। इंतजार था बाबा को देखने का, और बाबा को क्या हुआ है जो इतना बाबा सब कुछ छोड़ करके लौट रहा है। पर जब घर में आया, बाबा को सबने देखा, तो सब घर वाले, स्त्री को अनेक प्रकार के दिव्य दर्शन बाबा से होने लगा। दो बहुआ थी, दोनों बड़े बड़े घरों की थी, दोनों बहुओं को बाबा से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव और साक्षात्कार होने लगे। तो वो भूल गई कि ये हमारा ससुर है, बस हमको हमारा पिता मिल गया, या कहेंगे हमको भगवान मिल गया। स्त्री कहे हमको भगवान मिल गया, घर का वातावरण एकदम चेंज हो गया। भाई भाभी बहन जो बाबा के बिल्कुल नजदीक वाले, साथ रहने वाले थे, अब सारा प्रभाव पहले घर वालों के ऊपर पड़ा, फिर आने वालों के ऊपर पड़ा। पढ़ते 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 ये बात फैल गई, सारे शहर में फैल गई कि दादा लेखराज के सामने जो जाते हैं ना, उनको भगवान का दर्शन होता है। तो इसी बात को लोगों ने उल्टा भी करा, और दाता सुल्टा के बरूबर दर्शन होता था। परंतु वंडर ये था कि न सिर्फ बाबा की दृष्टि से साक्षात्कार होता था, तब तो समझ में आया बाबा ने कराया, पर कराने वाले ने वो जादू कर दिया जो जितनी भी कन्याएं माताएं सत्संग में बैठती थी, तो हम ओम की धुनि से सत्संग की शुरुआत करती थी। जैसे बाबा ने ओम सिखाया, तो ओम की धुनि पूरी होती थी तो कई बहने कई भाई ध्यान में चले जाते थे, डायरेक्ट परमात्मा ने उनको दिव्य दर्शन कराए। तो जो अनुभव बाबा को होता था वो उनको दिव्य दृष्टि के माध्यम से होता था। तो हम वंडर खाते रोज सत्संग करने जाते थे, सत्संग के बदले दिव्य दृष्टि में जो प्रभु की लीला चल पड़ती थी वो हम देख करके आ जाते थे। ज्ञान तो सुन नहीं सकते थे पूरा, क्योंकि अभी भी आप में से दो चार ध्यान में चले जाए तो आप सब उठने लग जाएंगे, कहेंगे क्या हुआ इसको हम देखें। उस समय की लीला अपरम्पार थी। फिर हम घर में चले जाते थे ना, तो घर में ओम की धुनि मुझे अच्छी लगती थी, मैं तर्ज निकाल सकती थी, तो मैंने ओम की धुनि सीखी। और मैंने घर में जाके ना अपने पड़ोस की लड़कियों को, या जैसे होते हैं नजदीक वाले, उनको बिठा करके ना आत्मा का ज्ञान सुना करके ना, फिर समझो मैंने ओम की धुनि लगा दी। तो धुनि लगा के मैं तो उस धुन में चली गई, दो तीन मिनट के बाद देखती हूँ आंख खुली तो मेरी लौकिक बहन ध्यान में चली गई, दूसरी एक पड़ोसन लड़की थी वो ध्यान में चली गई, सात लड़कियों में से दो जने ध्यान में चली गई, और इतनी जोर से गई जैसे वैकुंठ में पहुंच गई, कृष्ण से रास रचा रही है। अब छते खुली, दीवारें छोटी छोटी, और कृष्ण से रास कर रही है, कभी कृष्ण उधर भाग रहा है तो उसके पीछे भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, तो मैं उसको पकड़ूं उसको पकड़ूं। और मुझे डर था कि हमारी माता को थोड़ी एंटी थी कि ये कौन सा तुम्हारा ज्ञान है, भक्ति हमने की, पूजा पाठ हमने किया, व्रत नियम हमने रखा, हमको भगवान का दर्शन नहीं होता है, और तुम छोटी छोटी बच्चियां आई हो, हमको भगवान का दर्शन होता है, भगवान कोई तुम्हारे लिए फ्री बैठा है जो तुमको ही दर्शन देता है। तो मां मानती नहीं थी। अब मैंने देखा मैं अपनी बहन को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो भागती है कृष्ण के पीछे, वो देख रही है उधर उधर ही भाग जाती है। फिर मैंने लौकिक माता को बुलाया, उसने आके देखा, कहा तुमने क्या किया यहां, सच बताओ तुमने क्या किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ओम की धुनी लगा के सत्संग कर रही थी, अब ये चली गई ध्यान में, इसमें मैं क्या कर सकती हूं। वो कहती है नहीं तुमने जरूर कुछ यूज किया है, उसने भी सुना हुआ था मिस मेरिज्म क्या होता है, ना उसको पता ना मुझे पता, मिस मेरिज्म क्या होता है वो भी पता नहीं। और वो माता कहने लगी कि तुमने कुछ किया है, मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उसको जब देखा ना तो उसकी आंखें ऐसे करती, तो आंखें लाल लाल, फिर आंखें बंद हो जाए, फिर वो करे डांट लगाने लगी हमको। तो मुझे उसी दिन से गहरा निश्चय हुआ कि देखो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो यूं ही ओम की धुनी लगा रही हूं, अब ये ध्यान में चली गई तो ये लीला किसकी है। ना तो दादा लेखराज यहाँ है, न कोई वहां की सत्संगी बहन है, मैं तो घर में अपने बैठी ओम की धुनी लगाती हूं। परंतु ये सब क्या हुआ? तो मुझे भी लगा ये भगवान अपनी लीला दिखा रहा है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ये भगवान की कमालत है। तो फिर रोज मेरी माता कहती है, मैं हाथ जोड़ती हूं, तुम चली गई सो चली गई, दूसरी को आधा रंग लगा हुआ, पर तीसरी बच्ची मेरे हवाले कर दो, उसको इस सत्संग में मत ले जाओ। ठीक है भाई, जैसे तुम कहेंगी, छोटी बच्ची है, तेरे हवाले है, तुम रखो उसको अपने पास संभाल के। ऐसे हमको निश्चय बैठ गया, रोज हम सत्संग में जाते थे, बहुतों के दिव्य दृष्टि के अनुभव हमारे सामने आए, इतने विचित्र थे जो मैं आपको बता नहीं सकती हूं। बाबा की घरवाली, बाबा की बच्चियां, दादी प्रकाश में जो कल परसों मिली ना आपसे, कल सुबह को, कल शाम को, तो वो जो दादी थी उसको भी बाबा का बनने से 5 दिन पहले दिव्य दृष्टि में श्री कृष्ण के साथ बाबा ब्रह्मा का संपूर्ण रूप सामने आया। अब वो दादा को तो कभी देखा ही नहीं था उसने हैदराबाद सिंध में, मेरा तो घर पास में था तो चलो मैंने देखा, उसने तो देखा भी नहीं था। तो जिस समय उसने बाबा को उस रूप में देखा तो सपन में देख करके वंडर खाने लगी, ये कौन व्यक्ति मेरे सपन में आया, कृष्ण के साथ वो कौन ऐसा हस्ती है जिसका दर्शन कृष्ण के साथ हुआ है। और वो कहता है, बच्ची तुम उठो जागो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तो उसको आश्चर्य लगा, सुबह को उठ के अपनी मां को बाप को सुनाया, मुझे आज ऐसा अनुभव हुआ, वो कौन है यहां। फिर 5 दिन के बाद जब मां इस सत्संग में पहुंची है, नया नया सत्संग शुरू हो रहा था, तो बस फिर वो जो दर्शन था ना वो फिर बाबा के सामने रिपीट हुआ। उस दिन से उसका बाबा में भी विश्वास बैठा, तब से लेकर के आज दिन तक वो लौके घर में फिर लौट करके गई नहीं। और उसका जो फादर था वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था, वो जानता था इस बच्ची का भविष्य क्या है। तो उसको कहा था कि, घर वालों को कहा था कि ये मेरी बच्ची ने शादी नहीं कराएंगी, जब ये 15 साल के एज में आएंगी ना तो श्री कृष्ण समर्पण होंगी। पर कहां और कैसे वो उसको पता नहीं था। तो जब बच्ची ने अपना अनुभव सुनाया मां बाप को कि ऐसा सा हमको अनुभव हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और फिर बाबा के सामने गई तो सेम वो दृश्य जो था ना रात वाला, वो फिर उनके सामने रिपीट हुआ। बस ये तो लगता है भगवान खुद अपना काम कर रहा है, मैं भगवान की बन करके भगवान की सेवा करूंगी, भगवान जो मुझे आज्ञा देगा वो मैं काम करूंगी, निश्चय बैठा एक सेकंड में। इसलिए जीवन में चेंज आने में कोई देर नहीं, कुछ मेहनत ही नहीं की, बस वहां से निकल के हम यहां आ गए, यहां जो बाबा ने सिखाया उस पर चल पड़ी, चल पड़े तो मेहनत लगी नहीं। तो 1937 में इस विद्यालय का फाउंडेशन पड़ा, और बाबा को इसी के बीच में एक दिव्य साक्षात्कार और हुआ कि आने वाला संसार कैसा होगा, कलयुग जाने वाला है परंतु आने वाला संसार कैसा होगा। तो सत्युगी सुखमय संसार का बहुत सुंदर दर्श बाबा ने देखा, जिसके आधार से हमारी पिक्चर भी बनी हुई है। जब पांडव भवन में जाएंगे तो ओम शांति भवन का जो है ना बाहर का वरांडा, उसमें सब चित्र लगे हुए हैं, विनाश का भी और स्थापना का भी, कैसे स्वर्ग बाबा को दिखाई पड़ रहा, लक्ष्मी नारायण का राज दरबार देखी। फिर परमात्मा ने उसको आवाज दिया, उठो जागो, ऐसा सुखमय संसार तुम्हें बनाना है। तो आप सोच सकते हो मनुष्य तो परेशान होगा ना कि ऐसा सुखमय सुंदर संसार, दैवी संसार, वो मैं कैसे बनाऊंगा। बस बड़ी मीठी चिंता लग गई और खाना पीना छूट गया, नींद छूट गई, और भगवान से बातें रोज करता है, प्रभु मुझे अपनी विधि बताओ, मुझे शक्ति दो, मैं ऐसा कार्य आपका कैसे संपन्न करूंगा। तो बाबा नित्य नई नई बातें, परमात्मा है इस आत्मा को पढ़ाता है, सिखाता है टीचर बन के, फिर उसको रियलाइज कराया है कि तुम कौन हो। आत्मा का पूरा ज्ञान जो आपको शीलू बहन ने सुनाया होगा ना, वो तो आपको समझाने के लिए थोड़ा विस्तार किया, पर उसका सार परमात्मा ने उसको बताया कि तुम ये लखीराज नहीं हो, ये तुम्हारे देह का नाम है, तुम अजर अमर अविनाशी ज्योति हो, उठो अपने ज्योति स्वरूप को पहचानो, ये तुम्हारे देह का नाम है विनाशी, ये तुम्हारे देह के संबंध, पर तुम कौन हो तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता, मैं भी ज्योति स्वरूप हूं। तो पिता परमात्मा ने अपना भी परिचय दिया, उसको आत्मा का भी परिचय दिया और आदेश दिया कि ऐसे ज्योत से ज्योत तुमको जगाते रहनी है, सारे संसार को ये ज्ञान सुनाना है। तो बाबा की पहली दृष्टि तो घर वालों के ऊपर पड़ी। तो बाबा के सामने स्त्री आती है तो बाबा आश्चर्य से उसको देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है, पूछता है, जसोता तुम अपने आप को पहचानती हो? तो वो आश्रय में पड़ जाती है कि बाबा ये कहां से प्रश्न पूछता है। तो उसने कहा बाबा मैं तो जसोता हूं। बाबा ने कहा बच्ची ये तो तुम्हारे शरीर का नाम है जसोता, परंतु इस तन के अंदर विराजमान तुम कौन हो? तो बाबा ने नक्शा निकाल करके इसको दे दिया, शरीर का नक्शा और आत्मा का, शरीर प्लस आत्मा दोनों मिलकर के जीवात्मा बनते, बोलता चलता मंदिर। आत्मा विराजमान है तो ये शरीर में आत्मा विराजमान माना, ये बोलता चलता चेतन मंदिर हो गया। उसको रियलाइज ऐसा कराया कि जसोता को नशा चढ़ गया, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। सामने जिस किसी को देख दिया ये भी ज्योति स्वरूप आत्मा, ये भी ज्योति स्वरूप आत्मा, ये सब। तो हैदराबाद सिंध में मुसलमान लोग भी थे, गरीब लोग भी बहुत थे, गरीब शाहूकार का घर था तो गरीब भी आते थे, जमादारी, वो जिस किसी को देखती है जसोता उसको नशा चढ़ गया, ये भी एक आत्मा है। समान भाव, प्यार उनके लिए, रहम दिल। और मुसलमानों के लिए जो पहले थोड़ा सा वैर भाव था कि मुसलमान लोग तो ऐसे है, ऐसे करते न धर्म में, न ईमान में, न ये न वो, अब उनके भाव उनके लिए भी ऊंचा बैठने लगा कि आखिर भगवान के तो ये भी बच्चे हैं। तो दृष्टिकोण सबका बदल गया, आत्मा का दृष्टिकोण इतना खुल गया कि बस ज्योत से ज्योत जगती रहती है। हर एक बच्ची हर एक को ज्ञान सुना के उसकी ज्योति जगा देती है, रियलाइज कराती है। तो एक तरफ तो ये काम चालू होने लगा, दूसरी तरफ बाबा को एक विचित्र अनुभव हुआ कि बाबा का गुरु था तो ये खबर गुरु के पास पहुंची, लास्ट वाला गुरु, कि लखीराज को पता नहीं क्या हो गए हैं, नित्य नए नए दर्शन होते हैं और वो कहते हैं सत्युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, अभी भगवान को याद करना है। तो बाबा के जो भाई थे या रिश्तेदार थे, गुरु तक खबर पहुंची, गुरु में उसका अटूट भाव था, लास्ट वाले गुरु में। अब जब गुरु जी आया है तो देख रहा है कि उनकी चाल ढाल सब चेंज है, उसके चेहरे में रौनक है, मस्तक बाबा का ऐसा जोर से चमकने लगा, नैनों में रूहा नता, प्यार से सबको बोलता आओ बच्ची आओ बच्चे। बाबा से आयु में बड़े तो भी बाबा के मुख से निकलता है आओ बच्चे तुम स्वर्ग में चलेंगे ना, बाप आया है तुम्हारे लिए तिली के ऊपर स्वर्ग लेकर के आया है, बच्चे चलेंगे ना। ऐसे जैसे कि बरोबर बाबा कोई गिफ्ट लेकर के आया है और बच्चों को गिफ्ट देना चाहता है। तो गुरु जी ने देखा लाइफ में चेंज है, बहुत बड़ी चेंज है। घर वालों को कहा इसमें मिसमेरिज्म वगैरह लोग कुछ भी कहे, पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इसका नसीब खुला है, कोई भाग्य खुला है, इसलिए उसके लाइफ में नई चेंज है, उनको बरोबर दिव्य दर्शन हो रहे हैं। तो उसी दिन भी ऐसे लास्ट में गुरु जी बैठा है, गुरु जी के हाजिर में जैसे भ्राता जी सामने बैठे हैं, ऐसे गुरु जी के हाजिर में मर्यादा पुरुषोत्तम तो था, गुरु में प्यार था, तो उस दिन भी बैठा हुआ है जब तक कि एकदम स्पष्ट हो जाए कि मुझे परमात्मा ही टीचर बन के पढ़ा रहा है, मुझे क्या करना है स्पष्ट हो जाए, तब तक भक्ति और ज्ञान का संगम था। तो गुरु जी के भाव में बैठा हुआ है, लेकिन सतगुरु ने देखा अब तो मैं इसको जगा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, अब फिर ये देदारी में फंसेगा। तो इसलिए ऑलमाइटी बाबा ने उसी समय उसको फिर दिव्य दृष्टि दी। जब वो दिव्य दृष्टि दी ना तो बाबा की आंखें ऊपर की तरफ जा रही थी, ऐसे ऊपर 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 ऊपर, तो बाबा ऐसे देख रहा है कौन मेरे सामने खड़ा है। उस दिन निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने उनको अपना साक्षात्कार कराया, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने। तो जब साक्षात्कार किया तो बाबा को लगा कोई लाइट का पुंज है जो मेरे सामने है, नजर के सामने, इसलिए बाबा की आंखों में बहुत लाल आई थी। और वो ऐसे सामने से साक्षात्कार कराते कराते ज्योति बाबा के तन में प्रवेश हो गई। अब तन है साकार का, जिसका नाम दादा लेखराज, और उसमें प्रवेशता हुई परम पिता परमात्मा की। अब ऐसी होती है, ये तो उसको पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है कभी कोई इतनी महान शक्ति आके तन में प्रवेश करे, तो वो तो उसको पता ही नहीं था। तो जब बाबा ने देखा कोई शक्ति प्रवेश हुई, तो अंदर बाबा फील करे कोई शक्ति अलग होकर के बोलती है मेरे बुक से। तो शिव पिता परमात्मा की प्रवेशता थी, और शिव पिता ने इसके मुख द्वारा 5 महावाक्यों में अपना परिचय दिया। आप नोट कर सकते हो 5 महावाक्य। वो 5 महावाक्य जो शिव पिता परमात्मा ने साकार ब्रह्मा के मुख से उसको अपना माध्यम बना के, उनको निमित्त बना के, उनके द्वारा अपना परिचय दिया। नहीं तो भगवान का परिचय कौन देवे? देहधारी तो कोई दे नहीं सकते, वो खुद को ही नहीं जानते मैं कौन हूं, तो खुदा को कौन जान सकता है? खुदा वो खुद आके अपना परिचय देना होगा। प्रकाश स्वरूपम शिवो हम शिवो हम, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। दादा लेखराज तो देहधारी था ना, तो उसको रियलाइज कराता है कि मैं देहधारी नहीं हूं, प्रकाश स्वरूपम शिवो हम शिवो, ज्ञान स्वरूपम शिवो हम शिवो, आनंद स्वरूपम शिवो हम शिवो, प्रेम स्वरूपम शिवो हम शिवो, लास्ट शब्द शक्ति स्वरूपम शिवो हम शिवो। 5 महावाक्य धीरे धीरे बाबा के मुख से ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है। तो बाबा भी आश्चर्य में कि ये कौन बोल रहा है, क्योंकि खुद तो नहीं बोल रहा था पर मुख का आधार लेके कोई और बोल रहा है। तो बाबा को अलग शक्ति की फीलिंग आई, कोई अलग शक्ति है। कौन है वो? जो निराकार को तो जानता ही नहीं था, कृष्ण का भक्त था, कृष्ण को ही भगवान समझता था। अब निराकार परमात्मा ने अपना परिचय 5 महावाक्यों में दिया। फिर रिपीट करूं क्या? प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, लास्ट शब्द शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। 5 महावाक्य बाबा के मुख से ऐसे निकल रहा है जैसे कोई और शक्ति बोल रही है। तो बाबा की आत्मा तो अंदर विराजमान है, मुख का आधार उसने ले लिया बीच में, तो बाबा को अंदर फील हुआ कोई शक्ति है। तो जब एक सेकंड के लिए शिव पिता परमात्मा अपना परिचय देके लोप हो गए, अब इसको रियलाइज करा करके गया, तो बाबा की जब आंख खुली तो बाबा चारों ओर आश्चर्य से ढूंढ रहा है उस शक्ति को। अब बोल रहा है वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, चारों ओर आश्चर्य से ढूंढ रहा है। फिर बाबा को अंदर से फीलिंग आई, कोई लाइट है कोई माइट है, कोई लाइट है कोई माइट है, ऐसे करके फिर बाबा गुम हो गए। जब गुम हो गए उसके बाद आलमैटी बाबा ने उनको देवी संसार का साक्षात्कार कराया, जो मैं आपको बता के आई हूं स्वर्ग कैसे परमात्मा ने इसको दिखाया। तो जब स्वर्ग दिखाया तो बाबा हर्षित हो गया, और फिर आलमैटी बाबा ने उनको आज्ञा दी, ऐसा सुखमय संसार अब तुम्हें बनाना है, तुम निमित्त है, उठो, तुम्हें अपना काम करना है, परंतु करण करानहार मैं। इसलिए जब भी बाबा योग में बैठते थे तो शिव बाबा को, बाबा ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा को याद करती है। हम बच्चों को भी इशारा कि शिव बाबा को याद करना है, तब तुम्हारे भी कर्म नाश होंगे। तुमको घर चलना है, पिता के घर में जाना है, तो ज्योति स्वरूप स्थिति में रहो ताकि ज्योति धाम में सहज जा सको, देह का बांध छूटे। ये देह का भान है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं नेता हूं, मैं पिता हूं, मैं सेठ हूं, मैं स्वामी हूं, ये सब देह के भान है। इस देह के भान को छोड़ना है और सोल कॉन्शियस स्थिति और गॉड कॉन्शियस स्थिति में रहना। एक नया ज्ञान जो पहले उसमें था ही नहीं, उसके पास बिल्कुल नहीं थे, गीता का वचन लेकर धंधे में जाते थे जैसे भावना में ग्रस्ती लोग जाते हैं। अब आ गई चेंज, तो बाबा देखते हैं मैं यहां चुपचाप में बैठता हूं, मान में उठ करके अपने पलंग पर ही बैठा हुआ है चौकरी माँ के, तो बाबा का कनेक्शन ऐसा जुड़ जाता है, बाबा को एकदम जिगरी फीलिंग है कि कोई शक्ति है जो मुझे पढ़ा रही है, मेरा सुप्रीम टीचर है जो मुझे पढ़ा रहा है, तुम कौन हो, निज आत्मा का ज्ञान, कैसी जीवन चाहिए, कैसा संसार को बनाना है, विश्व कल्याण का प्लान, सब बाबा को डायरेक्ट परमात्मा से मिलने लगा। और बाबा की प्रवेशता ऐसी होती थी, बाबा का चेहरा चेंज हो जाता था, हम सबको फीलिंग है कि बाबा हमारे सामने इंसान के रूप में देखा ही नहीं, पहले देखा, एक ही शहर में रहने वाली हम बहने, मैं तो बच्ची थी पर मेरे से बड़ी बड़ी जो दादियां हैं ना वो बड़ी एज में थी, शादीशुदा भी थी, ज्वेलरी बाबा से लेती थी, तो जो ज्वेलर है उनसे ज्वेलरी लेने वाले तो उनके बुद्धि में तो ना फलाना है सेठ। परंतु अब चेंज ऐसी आई है कि अभी कोई को ये तो फीलिंग ही नहीं, ये ज्वेलर है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक दैवी फरिश्ता खड़ा है, भगवान सामने खड़ा, बस भगवान हमको मिल गया, सबकी फीलिंग भगवान हमको मिल गया। ये आवाज फैल गया सारे शहर में और जो आज्ञा मिली वो सब पालन करने की शक्ति भी मिली, कि नए संसार मिले, नया बीज चाहिए परमात्मा को, ध्यान से सुनने की बात है, नए संसार बनाने के लिए नया बीज चाहिए, नया बीज माने शुद्ध बीज, सत्व प्रधान बीज, मन आत्मा जो भी तमो प्रधान है, विकारों के वशीभूत है, उन सब विकारों को जीतना है और फिर से शुद्ध पवित्र बन के नए समाज का निर्माण का काम करना। तो बाबा के 5-6 नियम हमको लोगों को मिले। पहला नियम कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कलयुग जाने वाला है, इसमें ये सब शरीर नाश हो जाएंगे, सत्युग आने वाला है, इसलिए शेष संस्कार बनाने हैं, तो पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा नियम सत्य का संग, तीसरा अन्न की शुद्धि, प्याज लहसुन हम सब नहीं खाते जब से हम ज्ञान में आए हैं, और कुछ ऐसे गृहस्थी जिनकी लाइफ में वो नहीं है धारणा, तो उनके हाथ का पकाया हुआ भी हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि हम खुद अपने आत्मिक शुद्धि में लगे हुए हैं। तो अन्न की शुद्धि, आलस का त्याग, दिव्य गुणों की धारणा और नित्य ज्ञान स्नान, सारे दिन में ज्ञान स्नान एक बार जरूर करना। ये 4-5 बातें बाबा ने हम बच्चों के आगे रखी और हमने बहुत प्यार से उसको स्वीकार किया, तब से हम इन सब नियमों का पालन करते हुए आ रहे हैं। फिर तो आपको पता है कि ऐसे नियमों का पालन करेंगे, आज भी जितने आए हैं ना उनमें से एक कोई अमृत वेले उठे, खान पान की शुद्धि रखे और रोज क्लास में जाए, तो उनकी घरवाली कहेंगी ये क्या हुआ, ये माउंट आबू में गया, ये नई मुसीबत कौन सी लेके आया, वहां से कौन इसको लेके गया था वहां, मैं उनसे पूछूंगी ये तो कहां लेके गए, मेरा पति तो रोज 2 बजे उठ के योग करता है और कहता है मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, यानी एक प्रैक्टिकल देखो तो जरूर सबका माथा घूम जाएगा ना। तो उस समय भी समाज में बहुत विरोध हुआ, ये कहते ये दादा लेखराज जी ने बैठे बैठे नया रस्म रवाज क्या चालू किया है, ये नया ज्ञान आया कहां से, खुद तो गृहस्थी है, विकारों से खुद पैदा हुआ, अभी सभी को कहते ब्रह्मचर्य में रहो, अभी ये तो दादा लेखराज मनुष्य आत्मा वो थोड़ी डायरेक्शन दे सकता है, वो डायरेक्शन दे सकता है, खुद बाल ब्रह्मचारी रहा नहीं, बच्चों को पैदा किया, पोत्रे पैदा है और अभी दूसरों को कहता है ब्रह्मचर्य का पालन कर, तो ये उसका तो डायरेक्शन था नहीं, ये तो ऊपर वाले का डायरेक्शन था। इसलिए बाबा की दोनों बहुओं ने फॉलो किया, बाबा की बड़ी बच्ची ने फॉलो किया और बाबा की वो क्या भाभी बहन जो घर के नस्तिक वाले थे उसने सब ने उस बात को फॉलो किया, जो घर में बहू आई है उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन रखना शुरू किया, तो आप जान सकते हो उसका घर खुद काफी फिट है ना, लोग कहते थे दादा ने तो सबका घर पिटाया, पर बाबा कहते मेरा घर किसने पिटाया, मैं तो अच्छा भला चल रहा था, भक्ति मार्ग में सुखी था, मुझे कोई दुख नहीं था, हाँ भगवान से मिलने की आस थी, पर मेरा घर भी बदल गया तो मैं क्या करूं। ये तो ऊपर वाले का आदेश है। भगवान का फरमान है काम महाशत्रु क्रोध महाशत्रु इनको जीतो तब तुम स्वर्ग की बाछाई ले सकेंगे। तो सच्चाई थी, बाबा में बल था बहुत, इसलिए सारी समाज बिगड़ गई, सारा शहर समझो हैदराबाद का बिगड़ गया, एक दो को सुनाते सुनाते सुनाते, परंतु बाबा ने योग बल से ज्ञान बल से और शांति के बल से काम लिया। कभी उनका उन्होंने एक कहा तो बाबा ने दो करके नहीं बोला, किसी बच्ची ने दो करके नहीं शब्द बोले होंगे, सब ने सहन किया, सहन करके शांति के बल से हम अपना काम बढ़ाते गए। फिर कराची में बाबा को निमंत्रण मिला, फिर हम सब बच्चे कराची में गए, तो जिनको छुट्टी मिली, जो सगीर थे उनको पेरेंट्स छुट्टी नहीं देते हैं तो जा नहीं सकते हैं, और जिनको छुट्टी मिली वो बाबा के साथ सब कराची में गए, तो भी 450 के लगभग कराची तक पहुंच गए थे। फिर हम वहां 1938 में गए, 1950 तक, पूरा 50 तक नहीं, 50 में हम फिर यहां माउंट आबू में आए, तब तक हम कराची में थे। और अंदर ही अंदर बाबा ने जैसे ईंटों को भट्टी में पकाया जाता है ना, कैसे पकाया जाता है, चारों ओर से बंद करके, ऐसे दुनिया की आवाजों से निगाहों से बिल्कुल परे, ज्ञान योग धारणा सेवा के से और कोई बात ही नहीं, लाइफ ऐसी बन गई जैसे हम भगवान के संगी भगवान की दुनिया में जा रहे हैं, हमारा दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। सगे वाले आते थे तो भी हम उस समय नहीं मिलते थे, साधना का पीरियड था, फिर वो मोह की आके बातें करेंगे, फिर रोएंगे, फिर चिल्लाएंगे, इसलिए हम सब न्यारे न्यारे होकर के रहे। फिर हमारे पेरेंट्स हमारी बातों को समझने लगे, फिर वो बुलाते थे आओ आकर के हमारी सेवा करो, हमको भी ज्ञान सुनाओ, तब बाबा मम्मा की आज्ञा से हम 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए जाते थे, अपने सब नियमों का पालन करते हुए उनकी सेवा करके आ जाते थे। 7-7 दिन गए भी होंगे ना तो खाना नहीं खाया होगा उनके बर्तनों में, क्यों सब मीठ मीठ खाते थे, अब हम शुद्ध आत्मा फिर कहां से ये बर्तन लेके वहां जाके खा। 7 दिन बाबा ने भट्टी में बहुत प्यार भी दिया और रूहानियत भी भरी, लाइफ में एक नया मोड़ आ गया। फिर बाबा ने कहा अब तुमको जीना है, अपने लिए थोड़ी जीना है, भगवान के बच्चे हो, सारे वर्ल्ड में भगवान का संदेश पहुंचाना है, तो जाओ तुम चेतन ज्ञान गंगाएं हो, भगवान का आदेश है तुमको, तुमको जाकर के संसार का कल्याण करना है। फिर हम शिवार्थ निकले, जानते कुछ नहीं थे, सब रास्ते बंद हो गए हमारे लिए, जैसे ट्रेन देखी नहीं 14 साल में, सिक्के चेंज हो गए तो नहीं देखा, राज चेंज होगा कुछ नहीं देखा, परंतु फिर भी भगवान की छत्र छाया में हम बाहर निकले सेवा करने, दिल्ली में, पंजाब में, अमृतसर में, बंबई में, जहां जहां हमारे पेरेंट्स थे ना उनके निमंत्रण पर हम गए, फिर वहां जाकर के सबकी सेवा की, करते 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 सेवा केंद्र खुलते गए। फिर बाबा ने कहा बच्ची 150-200 सेवा केंद्र खुले तो हमने तो सोचा, हमने तो बहुत बड़ा काम किया सभी बच्चों ने मिलकर, तो हम खुशी खुशी में हम बाबा को बोलते बाबा भी 150 सेवा केंद्र खुल गए, उधर भी खुला, उधर भी खुला, उधर खुला, तो बाबा मुस्कुराता था, जैसे बाबा कहते ये तो छोटा काम किया है, हम समझते हमने बहुत काम किया, बहुत सहन करके लोगों की गालियां खा करके एक एक सेंटर संभाला, और बाबा कहते अब बच्ची अभी तो संसार बहुत भरा पड़ा, तुमको तो सारे संसार में छा जाना है, सारे संसार को मेरा संदेश पहुंचाना है। तो हम कहते कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, भाषा तो जानते नहीं है, जापान में जाए तो जापान की भाषा को जानते नहीं, किस भाषा में हम उनको ज्ञान सुनाएंगे। परंतु ड्रामा धीरे धीरे खुलता गया, अचानक जापान का भी निमंत्रण मिला, बाबा के होने पर जापान का निमंत्रण गया, तो हमारे 3 भाई बहन वहां गए, फिर सेवा करके बरस के बाद फिर लौट करके आए, फिर दूसरा निमंत्रण मिला, ऐसे जहां से निमंत्रण मिलता था विदेश में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी वहां बिखरे हुए हैं चारों ओर, जो भी हमारी बहनें हैं सिंध की, तो पेरेंट्स को पता लगा उन लोगों का निमंत्रण आता था, वहां निमित्त मात्र रह करके सेवा हम सारे शहर की कर लेते थे, रेडियो के द्वारा, अखबार के द्वारा, जहां तक हम कर सकते थे, करते 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 सेवाएं विदेश में भी बढ़ गई तो देश में भी टू मच हो गई। फिर बाबा का ये वरदान, बच्ची ये तुम्हारा हाल छोटा पड़ेगा, धीरे धीरे तुमको बहुत बड़ा हाल बनाना पड़ेगा, एक हाल बना है वो छोटा हो गया, दूसरा हाल बना है वो छोटा हो गया, तीसरा बना है वो, अब चौथा हाल नीचे बना है, जिसमें 20,000 के लगभग लोग बैठ सके, तो वो भी छोटा पड़ रहा है। अभी आप बढ़ रहे तो एडिशन होंगी ना, लोग पूछते आखिर तुम्हारे भाई कितने हैं। भाई रोज नए नए बच्चे भगवान के पैदा हो रहे हैं, तो हमारे भाई बढ़ रहे हैं। तो हम आपको कैसे बताएं कि यहाँ सारा संसार ही हमारा परिवार है। तो मतलब विचित्र कारोबार चलते है, पर बाबा ने पहले ही बताया कि ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे तुम्हारे हाल बने। बच्चे बहुत बच्चे आएंगे, पूरा जैसे जो कुछ आज हमारी आंखें देख रही वो पहले ही बाबा ने बताया हुआ। इसलिए हम निश्चय बुद्धियों के कदम उठा रहे हैं, और आज भी वो सुख अनुपम में हम बच्चों के साथ मददगार है। भले बाबा अव्यक्त हो गए 69 में, परंतु आज भी वो सूक्ष्म रूप में हम बच्चों को जो संदेश पुत्रियां हैं, ध्यान में जाने वाली आत्माएं हैं, उनके द्वारा मैसेज दे करके बाबा के यज्ञ के कारोबार को हम चला रहे हैं। पर आदेश से बाबा का, जो सेवाएं करते हैं वो भी बाबा के पास सब सेवाएं जाती है, और बाबा से नया नया प्लान सेवा के लिए मिलता है, उस आधार पर सब बच्चे मिलकर सेवा करते हैं। तो ये तो मैंने सार में बताया। तो 1938 में हम आए कराची में, और 1950 में हम माउंट आबू में आए, और 1950 से लेकर के 98 तक ये सेवाएं चल रही है। बहुत समझो हमारे 70 देशों के अंदर बाबा का कार्यक्रम चल रहा है, और इसके सिवाय बाकी देश के अंदर भी कितने स्थानों पर हमारी सेवा, 3,500 के लगभग सेवा केंद्र है, जिसमें छोटे भी सेंटर है, बड़े भी सेंटर है। सब भाई बहने मिलकर के लगे हुए हैं कि हम गांव गांव तक बाबा का संदेश पहुंचे। परंतु पहला आदेश बाबा का ये है, पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन। बच्चे जब तक तुम स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते। जोर है बाबा का, पहले खुद बदलो तब दूसरों को बदलो, तब तुम्हारी जुबान में ताकत आएंगी। तुम खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या कह सकेंगे, गला घुट जाएगा, कह नहीं सकेंगे तुम ऐसा गुण धारण करो। अनुभव करके देखो, पाप अंदर होगा ना तो मुख से नहीं निकलेगा, और जो चलने वाला होगा वो तो फलक से सबको कहेगा। तो अब नया युग आने वाला है, और जो दिव्य दृष्टि में बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ है वो होने वाला है, 100% हमको विश्वास है। उसलिए हम स्वर्ग में जाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। कहो तो मैं आप सबकी भी रिजर्वेशन करा दूं, करा दूं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई, सबका हाथ देखो, जिसने न उठाया हो बहुत अच्छा, मैं ताली बजाती हूँ। मुझे खुशी है कि आप सब हमारे साथ चलेंगे, परंतु भी मुझे कहना पड़ता है, परंतु टिकट है वो कोई 50-100 रुपए वाली टिकट नहीं है, स्थूल नहीं है, कुछ आपको स्थूल टिकट नहीं मिलेंगी। परंतु उस वतन में जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए, कृष्णपुरी में जाने के लिए हमको कृष्णपुरी जैसे संस्कार बनाने पड़े। 5 विकारों को, खोटे पैसे ना जो आपके काम में आते नहीं है, क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो आपको भी धोखा देते हैं और दूसरे को, जिस किसी को भी देंगे ना क्रोध करेंगे तो वो भी तेरे से दुखी हो जाएंगे। तो भगवान हमसे ये 5 खोटे पैसे मांगते हैं, बच्चे बस तुम मेरे बच्चे हो, मेरे समान शुद्ध बनो, ये 5 खोटे पैसे का त्याग करो। उसके लिए फी है हमारे विद्यालय की 1 आना। 1 आना है आपके पास जेब में, देखो खोल करके, 1 आना है नहीं है? 1 आना मीन्स आपको 1 बारी आना है सिंड्रम में, ताली बजाओ, पकड़ देगा। 1 बार आपको आना है, 1 बार आएंगे तो ये जो खोटे पैसे है ना आपके अंदर, आजकल ठगी का जमाना ना, पैसा खोटा डालेंगे, अच्छा स्वच्छ पैसा ले लेंगे, आरती में डालेंगे, ठका हुआ ना फिर दूसरा पैसा ले लेगा, तो भाई ठगी वाला पैसा तो नहीं चल सकता है। अच्छा स्वच्छ अधिकारों का दान देना, बेकार चीज को छोड़ देना है। मन में दृढ़ संकल्प करेंगे और रोज संग करेंगे बाबा के घर में जाने का, तो आपके ये खोटे पैसे आप ही निकल जाएंगे। अनुभव करके देखो, शुद्धता आती है ना तो फिर अशुद्ध बातें अच्छी नहीं लगती मन को, मन से भाग जाती है। तो विनाश सामने खड़ा है, पक्का कर देना। आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो इतनी दुनिया हरी भरी हो रही है, तरक्कियां हो रही है, क्या क्या कंप्यूटर काम कर रहा है, तो आपको लगेगा ये तो और अच्छा सुधार हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक रीति से देखो तो सुधार नहीं है, बिगाड़ है, चरित्र गिरता ही जा रहा है, भ्रष्टाचार पापाचार का बोलबाला है। तो अति का अंत होगा, आखिर तो होगा ना, ये मकान पुराना हो जाएगा फिर क्या होगा, गिरेगा ना, न भी कोई गिरा तो भी गिरेगा, ये गिरने वाला ही है। कुदरती आपदाओं से भी गिरेगा, तो सिविल वार से भी गिरेगा, और बॉम्ब जो बना के रखा है वो एक दो को दहेज में देने के लिए तो नहीं बना के रखा है, भाई चलो मेरी बेटी तुम्हारा बेटा लो 10-20 बॉम्ब्स मैं तुमको देता हूं, तो क्या होगा, बना के किस लिए रखा है। जब भूत प्रवेश होगा तो फटाफट बटन दबाएंगे और घर बैठे आप जहां बैठे होंगे वहां हमारा खात्मा वो कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये अंत में कुछ काम ही नहीं आएगा, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी 10-20 तुम्हारे को, पर ये धन सबका मट्टी में मिल जाने वाला। जो सच्चा धन है ज्ञान धन, वो हमारे साथ चलेगा, वो हमारे संस्कार में घुस गए ना तो वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे, शरीर नाश हो जाएंगे, आत्मा फिर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति में चली जाएंगी, जिन्होंने जैसा कर्म किया होगा। कुछ आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी, बाकी कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान योग की धारणा वाले वो जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे। तो ये समय है परिवर्तन का। हमारे अच्छे अच्छे साहित्यकार आए हैं जिन्होंने साहित्य के आधार से समाज को बदला है, तो मेरी ये आशा है कि भगवान के ज्ञान को अच्छी तरह से, अंधश्रद्धा नहीं, अच्छी तरह से समझो, क्वेश्चन आंसर करो, जब आप खुद निश्चय बुद्धि हो तो आपके कलम में ताकत आ जाएगी। नए युग का निजारा क्लियर कर दो, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, सबको ऐसा निश्चय बिठाओ। अब क्या करना है विनाश के समय में, याद भगवान को करना है, देहधारी को याद करने से कोई फायदा नहीं, वो हमारे साथ चलेंगे नहीं, परम धाम्य आत्माएं जाएंगी, मच्छरों सदृश उड़ेंगी। तो भगवान की आज्ञा है देहधारी को मत याद करो, मुझ एक निराकार बाप को याद करो, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और मेरी आज्ञा का पालन करो, अगर सत्युग में चलनी चाहते हो तो विकारों का त्याग करो, बस। अगर नहीं चलने चाहते, इसी जीवन में मौज में रहती हो, दुखी नहीं होते हो, तो आपकी मर्जी, भगवान क्या कर सकता है, भगवान तो आज्ञा देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, विवेक देगा, तो वो मिल रहा है, उसके आधार से हम बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो सत्युग आने वाला है, उसकी तैयारियां हो रही है, हम बीज डाल रहे हैं सब में, चारों ओर से, और हमारे सब भाई बहने भारतवासी भी लगे हुए हैं, तो विदेश वाले बच्चे भी लगे हुए हैं, खूब नई नई इन्वेंशन निकाल के समाज को कैसे ये भगवान का पैगाम देवे, उसमें वो लगे हुए हैं। तो अभी बाकी 5 मिनट है, तो मेरे से कईयों ने पूछा है तो बाबा की अंतम अवस्था कैसी थी और अंतिम शरीर कहाँ और कैसे छोड़ा। तो यही थे, माउंट आबू में थे, आज से मन शरीर छोड़ने से 6 मास पहले उन्होंने आलमैटी बाबा से पता लग गया, इसलिए एक वाणी में स्पष्ट शब्द आए, बच्चे ये ब्रह्मा बाबा भी चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये जो कार्य है वो चलता चलेगा, चलता चलेगा, और ब्राह्मण बच्चों की वृद्धि होती ही रहेगी, तुम्हारे को बहुत ज्ञान का बड़ा खजाना मिला हुआ है, क्योंकि काफी सालों से जो बाबा ने वाणियां चलाई है हर रोज की, हर तारीख में, एक भी तारीख मिस नहीं होंगी, 18, 19, 20, 21 ऐसी तारीख लो, हर साल की हमारे पास 6-7 साल की बाबा के महावाक्य है जो हर रोज बाबा ने चलाए हुए हैं। तो तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना बहुत है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, और तुम बच्चों को क्या काम करना है। तो ये शिव बाबा के यज्ञ की वृद्धि होती रहेगी, शिव बाबा के साथ तुम्हारा योग है, कनेक्शन है। तो ऐसे कह कह के ना बाबा ने वाणी पूरी की, इतना थोड़ा सा पेज लिखत में था उस समय की। तो फिर जब बाबा ने वाणी चलाई तो हम बच्चों ने ऐसे सोचा, बाबा हमको, हमारा बहुत बाबा से प्यार है, बाबा ने बहुत प्यार से पालना की है, इसलिए बाबा हमको थोड़ा उपराम करना सिखलाते हैं कि ये बाबा भी चला जाएगा तो भी तुम्हारा काम चलता रहे। 6 मास के बाद, पक्का 6 मास नहीं, मतलब लगभग 5-6 मास ऐसा हुआ, उसके बाद वो घड़ी आती है, जबकि बाबा यहाँ यज्ञ में है और हमारी सब दादियां बाहर गई हुई है। बाबा कहते हैं बाबा यज्ञ में बैठे हैं, तुम बच्चे सब सेवा पर जाओ, एक दिन एक घंटा भी वेस्ट नहीं करना है। मुंबई में लिटरेचर छपाना है, बांटना है, फलां जगह ये करना है। रोज बाबा डायरेक्शन देता था सेवाओं के लिए, सेवा करो सेवा करो। बाबा यहाँ बैठा है, बाबा के पास कोई बच्ची की जरूरत नहीं है। हमारी मातेश्वर ने शरीर छोड़ दिया था उससे पहले, तो फिर बाबा ने हमारी दादियों को भी भेज दिया था। तो वो जो घड़ी आती है 18 जनवरी की, तो हमारी बड़ी दादी है ना जो कल परसों आपसे मिली, वो मुंबई में रहती थी, मुंबई में सेवा करती थी कई सालों से, पर एक ग्रुप को लेके आई थी। तो ग्रुप गया दिल्ली की तरफ और बाबा ने इसको स्पेशल रोक लिया, बच्ची 2 दिन रुक सकती हो? तो कहा बाबा, कहा बच्ची तुम ठहरो, 2-4 दिन ठहर के पीछे जाना। तो रुक गए, वो तो बड़ी खुश हुई, तो आज बाबा ने पहली बार हमको रोका नहीं, तो कहते जाओ सेवा में, भागो सेवा में। तो रुका है, तो 17 तारीख में बाबा ने उसका हाथ पकड़ करके ना सारी परिक्रमा लगाई है, सारा जो बाबा का घर है वो सब दिखाया। धीरे धीरे बाबा बोलता जा रहा है, बच्ची आगे चल कर किन है तुम्हारा बहुत कार्य वृद्धि को पाएंगा, बच्चे बहुत आएंगे बहुत आएंगे, उसके लिए रहने का प्रबंध भी चाहिए, उसके लिए अनाज पानी भी चाहिए, कम से कम 12 महीने का अनाज आपके पास जरूर होना चाहिए, ऐसी ऐसी हालतें होंगी तो कुछ नहीं मिल सकेंगे, पानी का भी होना चाहिए, मकान पिछाड़ी मकान भी बनाते ही रहना है बच्चों को। तो ऐसे बाबा डायरेक्शन दे रहा था। तो एक बड़ी दीदी थी, वो उस समय थी नहीं, तो दादी ने सोचा कि वो बड़ी दीदी जो सदा बाबा के साथ रहती है, वो कलकत्ता में गई थी, मैं भी उनके साथ गई हुई थी, तो वो आएंगी तो मैं ये सब बाबा के दर्शन उसको सुना लूंगी ताकि वो तैयारी करती रहे। तो बस पहले दिन 17 तारीख ये सब डायरेक्शन दिया, 18 तारीख सुबह को पहली बार ही बाबा, बिल्कुल सर्दी की भी मौसम थी और बाबा बिल्कुल साइलेंस में था, तो दादी ने समझा कि कुछ बात है, बाबा आज बिल्कुल साइलेंस में बैठा हुआ। कहा बाबा मैं क्लास में थोड़ा पहले जाती हूँ और आप थोड़ा सा ठहर करके भी आ सकते हैं, बाबा आज कुछ आपको है तबीयत में ऐसा? नहीं नहीं बच्ची कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उनकी अंदरूनी योजना थी कर्म भोग जो लास्ट वाला है उसको योग से चुक्त करना, इसलिए बाबा बिल्कुल डीप साइलेंस में था। फिर दादी पहले गई है, 15-20 मिनट दादी ने क्लास में बोला ही होगा, तो बाबा आके पहुंचा। पर वो पहला ही दिन था जबकि बाबा ने सबको सर्च लाइट योग की दी है, अपने को भी सर्च लाइट मिले तो दूसरों को भी मिले, कर्म भोग को योग से चुप्त करने की योजना के हिसाब से। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला। फिर जब उठ करके बाबा जा रहे थे तो दरवाजे के पास खड़े होकर के बाजू पीछे करके ये हाथ ऐसे करके, और फिर बाबा ने 3 शब्द बोले हैं, वो नोट कर सकते हो, अंतम बोले ये थे, निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी, 3 शब्द दे करके, अच्छा गुड मॉर्निंग नमस्ते, अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते, अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। पर तो विदाई हम लोगों ने समझी थोड़ी ही, कौन सी विदाई? हमने सोचा ऐसे बाबा क्लास से जाते हैं ना, तो क्लास से विदाई लेके जा रहा है अपने कमरे में, बुद्धि उस तरफ तो गई नहीं किसी की, ऐसी प्रभु की लीला थी। तो बाबा ऐसे बोलकर के धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ रवाना हुए। फिर वहां कमरे में बैठा तो भी बिल्कुल बाबा डीप साइलेंस में, कोई भी कारोबार की कोई बात और नहीं कही। और उन्होंने कहा कि बाबा थोड़ा ऐसा लगता है कि आपको कुछ बाजू में दर्द है, कुछ ऐसा जैसे हार्ट का थोड़ा होता है ना। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बाबा को तो कुछ नहीं है, बाबा ऐसे डॉक्टर आएगा थोड़ा देख करके जाएगा, फलानी माता भी बीमार है, फलाना भाई भी बीमार है। बाबा चाहता नहीं था डॉक्टर आवे, पर युक्ति से डॉक्टर किसी माता की बहन ने डॉक्टर को बुला के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने भी बाबा को देखा, बोला ठीक है बाबा। बाबा का अंदरूनी संकल्प नहीं था कि डॉक्टर का हाथ लगे। फिर ऐसे सारा दिन बीता, फिर पत्र आए हुए थे जिन बच्चों के, पत्र पढ़े, पत्र को उत्तर दिए, दे करके फिर रात्रि का टाइम हुआ तो स्पेशल दादी को कहा, बच्ची बाबा जहां जहां से जाते हैं ना तो सब बच्चे देखते, आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, हम बाबा के महावाक्यों के लिए मुरली बोलते, मुख की ज्ञान मुरली। भगवान के महावाक्य ज्ञान की मुरली है ना। तो बच्ची तुम जल्दी क्लास इकट्ठा करो, सभी बच्चों को भोजन खिला के क्लास में बिठाओ, बाबा के सबसे मिलते। तो बाबा आके सबसे मिले हैं, आधा घंटा सबसे बातचीत की, सब प्रकार की, जैसे पिता जाता है ना कहाँ, तो सब प्रकार की शिक्षा देखी जाता है, बच्चों को कैसे चलना है, कैसी धारणा में रहना है, अविष्टा को कितना ऊंचा रखना है, घर में जाना है, बाबा के घर में जाना है, कैसे बच्चों को स्वच्छ होकर जाना है, ऐसी मीठी मीठी सिखाएं दी, ऐसे शिक्षा दे करके। अच्छा, गुड नाइट, बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। शायद सुबह को विदाई नहीं शब्द यूज किया, रात्रि को किया है, मुझे अभी ख्याल में आता है, रात्रि को करके फिर बाबा कमरे की तरफ चला गया। फिर 5 मिनट का खेल था, जैसे खटिया पर बैठा तो बाबा को फिर अंत में कोई लहर उठी है हाथ की, तो दादी सामने खड़ी थी, बड़ी दादी, बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अंत में दृष्टि दी। बस दृष्टि से बाबा ने वो शक्ति उसको दी, बाबा अव्यक्त हो गया और दादी को इस कार्य के लिए पूरा जिम्मेवारी का ताज पहना करके गया। फिर तो बाबा अव्यक्त हो गया तो उसको तो पता ही नहीं लगा, हाथ में हाथ था, हाथ सिर्फ थोड़ा ढीला हुआ, तो उसने सोचा पता नहीं कुछ बाबा को हुआ है, हाथ थोड़ा ढीला हो गया। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने आके डिक्लेयर किया कि पिताश्री अव्यक्त हो गए हैं, अभी आपको जो करना हो, जैसा कहना हो वैसा करें, शरीर को जहां रखे जैसे रखे, मैं अभी मोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं, जैसे बाबा लेटे हुए हैं वैसे ही लेटे रहेंगे। और डॉक्टर ने कहा भले आप लोग इतला दो जिन भी बच्चों को बुलाना हो। यानी एकदम से इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन दादी को 100% निश्चय हमारा बाबा हमारे साथ है, वो जा नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। डॉक्टर कह रहा तो भी दादी के अंदर का विश्वास क्यों ऐसा हुआ, वो राज में खुलती हूं, बाबा जा नहीं सकता है, बाबा का वायदा है हम बच्चों से, मैं साथ ले जाऊंगा। तो उसी समय जब बाबा का हुआ तो सब उन्होंने, डॉक्टर ने कहा सबको इतला दो, सबको इतला दिया किया। तो 18 तारीख रात्रि को शरीर छोड़ा है, 19, 20, 21 तारीख शाम को 4 बजे के लगभग, तब तक सब बच्चे चारों ओर से आ गए थे। फिर उनके सामने बाबा के शरीर का संस्कार हुआ। संस्कार के बाद फिर हमारे पास ध्यान में जाने वाली बहन थी जो ट्रांस में जाती थी बचपन से ही, जब वो 8-9 साल की थी, और ट्रांस में जाती थी तो संपूर्ण ब्रह्मा को बहुत देखती थी और बहुत बातें करती थी, तो वो उस समय मौजूद थी। तो उसको संदेश दिया, पहले भी संदेश देते रहे हैं, कुछ भी ऐसा विशेष कार्य करना होता था तो जाओ तुम बाबा से मिलकर के आओ, और बाबा को हम बच्चों का मीठा मीठा वो लहना दो कि बाबा आपने क्या किया, आप तो चोरी चोरी चल बसे, आपने हम बच्चों से छुट्टी क्यों नहीं ली, बाबा आप हमसे छुट्टी तो लेके जाते ना, तो जैसे प्रेम के आंसू और प्यार से वो लहना भरा हुआ बाबा को मैसेज दिया। तो वो तो गई ध्यान में, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को देखा, हमेशा भी देखती थी। तो बाबा ने कहा मैं कहां गया हूं, बाबा ने तो ऐसी साधारण बात की, बस बच्ची एक कमरा चेंज किया है और कपड़ा चेंज किया है, मैं तो तुम बच्चों के साथ हुई हूं, पहले साकार वतन में अभी आकारी वतन में, जब भी बच्चे याद करेंगे बाबा मिलने के लिए आते रहेंगे, बच्चों से बाबा मिछड़ा ही कहां है, बाबा गया ही कहां है। तो फिर उस दिन से लेकर के शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों की समीपता हो गई ना, संपूर्णता को पाया तो माना वो एकदम आत्मा शिव बाबा के बिल्कुल समीप हो गए, दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो हम दोनों करने कहते बाप दादा दोनों। अब तब से लेकर के हमारे पास गुलजार दादी के नाम से एक कन्या है जो इस समय नहीं है, रहती है परंतु अभी बॉम्बे में गई हुई है, तो उसके तन में बाबा की प्रविष्टता होती है। फिर वो बाबा से तारीख लेके सब बच्चों को नंबरवार बुलाते हैं, नंबरवार देते क्योंकि हजारों में बच्चे सब बाबा से मिलने चाहते, तो एक टाइम तो मुलाकात हो नहीं सकेंगे, इतना बड़ा हाल भी नहीं होता है जिसमें सब बच्चों को, तो टर्न देते हैं बाबा से पास करा करके, प्रोग्राम बना के गुजरात वालों को भी गिनती मिलती है कि 400-500 भाई बहनी जो नए नए निकले हैं, जो धारणों में चल रहे हैं, जो नियमों का पालन करें, उनको आप ले करके आ सकते हो। पर हर एक जोन को टर्न मिलता है, उस अनुसार बाबा की प्रविष्टता होती है और बाबा सभी बच्चों से आके मिलता है। ऐसा नया राज पहले किसी को भी पता नहीं है, मैं आप लोगों को खोल के बता रही हूं। अगर आप भी बाबा से मिलने चाहें तो मिल सकते हो, बशर्ते 5 खोटे पैसों का त्याग करके स्वच्छ हो गया दृष्टि अव्यक्त हो ना, नहीं तो देहधारी दृष्टि है ना, देहधारी दृष्टि से हम पहचान नहीं सकेंगे, प्रवेशता में अनुभव नहीं कर सकेंगे, उसे शक्ति को पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए जो बाबा के नियमों का पालन करेगा, कम से कम 1 बरस पालन करके फिर बाबा के सामने आएगा तो नजर मिलाने की शक्ति आएंगी, दृष्टि खुली होंगी तो अलमैटी बाबा की शक्ति को आप ग्रहण कर सकेंगे। तो मैंने आपको सारी गुप्त बात भी बता दी, कुछ रखा नहीं अपने पास। तो आप भाग्यशाली आत्माएं हो जो फिर भी अभी आए हो, और फिर बाबा ने आने के लिए इशारा दिया कि नवंबर मास में बाबा बच्चों से मिलने आएंगे, क्योंकि देश विदेश के बच्चे बहुत तरफते हैं बाबा से मिलने के लिए। तो आपको अभी तरफन तो शुरू हुई नहीं है, क्योंकि अभी तो परिचय नहीं है पूरा, तो अभी तो आपका पहला दिन है, जन्म हुआ है, 2 दिन के बच्चे हो, तो इसलिए मैं तुमको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ और अपने बाप से मिलन मना सको। ओम शांति।